सफा नंबर 121। नंबर 5, शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने नस्मा के मानी है नहायत लतीफ जिस्म, जिस्म बराए नाम इसे मतिया उल रूह, रूह का मरकब भी कहा गया है और वो रूह का मुतरादफ भी है। खुदी का तजर्बा हमें बतौर एक मरकज महसूसात व मुदरकात ही के होता है, वो एक नुकता शऊर है, लेकिन इसका एक मादी हवाला भी है यानी जिस्म। लिहाजा सवाल पैदा होता है कि हयात बाद मौत पर भी क्या किसी मादी हसी हवाले यानी पैकर की ज़रूरत है, लेकिन पैकर तो खुद ही की एक शान है। बकौल मौलाना रूम, पैकर इज महस्त शुद ने मा अजू बादा अज मा मस्त शुद ने मा अजू माचू जम्बूरियम व कलब हाचू मोम खाना खाना कर्द कलब राचू मुँह। लिहाजा किसी लतीफ़ पैकर जब नस्में का तसव्वुर गो हज़रत अल्लामा के नज़दीक गैर ज़रूरी देखिए सिलसिले में खुतबात और इसरार खुदी दीबाचा तबा अव्वल खुतबा चहारम बहस हयात बाद मौत नीज हज़रत अल्लामा का मजमून। मुस्लिम रिव्यू लाहौर सीट 1932 सम स्टडी नोट्स में के इस रूए साइंस माद जिस्मानी भी मुमकिन है ये कि इंसान इसी बदन के साथ जो इसे हयात दीनवी में मिला फिर से जी उठे। एक हजरत अलामा का इशारा गलबन लफज शरीर हिंदी में शरीर की तरफ था, लेकिन कौन सा शरीर इसकी वजाहत नहीं फरमाई। मुमकिन है वो शरीर जिसकी बदौलत जियो आत्मा एक जीवन से दूसरे में मुंतकिल होती है या इंसान के मादी और तबी जिस्म से मावरा जियो आत्मा के बातबार से होती है, या इंसान के मादी और तबी जिस्म से मावरा जियो आत्मा के बातबार मरातब एक के बाद दूसरे शरीर का तसव्वुर, या इन दोनों सूरतों के अलावा। सफा नंबर 122, कोई और शरीर, लेकिन सियाक कलाम से तो यही मतरशफ होता है कि कोई ऐसा शरीर जिसका तल्लक मौत के बाद दूसरे जीवन के शरीर यानी खुद के नस्ख से है। मैंने अर्ज किया जिंदगी के मादी शराइत तो मुस्लिम हैं कि हम इन्हीं ये यकीन व इत्मीनान पूरा कर सकते हैं, मगर सवाल इस नफसियाती शराइत का है, हम कैसे कहें हमने इन्हीं पूरा कर दिया। हयात बाद मौत में हमारा ईमान ही इस मामले में हमारा वाहिद सहारा है। नंबर 2, के हमारा मादी जिस्म महफूज रहे। 3, अपनी सीरत व करदार में अरशाद व सहारा ही नहीं राज भी, लेकिन शर्त यह है कि हम अम्बिया अलैहिस्सलाम की जिंदगी को मेयारे अमल ठहराएं। मैंने कहा इसीलिए तो ये कहना मुश्किल है कि इस मियार पर कौन पूरा उतरा कौन नहीं उतरा। हम अपने मतलब तो दावे से कुछ नहीं कुछ भी नहीं कह सकते, यूं भी दिलों का हाल कौन जानता है। इल्मो खैबर तो सिर्फ अल्लाह ताला की जात है, हम समझते हैं बसानियाँ ज़रूर होगी और इसलिए खुद ही की तरबियत और अदम तरबियत का ख्याल ही नहीं करते, करते हैं तो सजा व जजा का, जैसे शराइत का मामला जजा व जजा से है वाबस्ता है ना कि हयात बाद मौत से। एक राज इसलिए कि हम ये तो समझते हैं कि निशात औला की तरह निशात आखिरी भी एक हकीकत है जिसे सहूलत फहम के लिए एक तरह का हयाती अमल ही कहा जाएगा, लेकिन मुश्किल यह है कि हम इसकी माहियत से बाखबर हैं। हमें तो ये भी मालूम नहीं कि इस मादी दुनिया में हम जहाँ हम पैदा हुए हैं हमारी जिंदगी का हयाती अमल कैसे रूनुमा हुआ। फिर ईमान का तकाजा है अमल, लिहाजा अगर ईमान और अमल दोनों पहलुओं से अम्बिया अलैहिस्सलाम सफ़ा नंबर 123 की पैरवी करती होती रहे तो ज़ाहिर ज़िंदगी में वो सहीयत व दुरुस्तगी और इस्तकाम पैदा हो जाएगा जो खुद ही को मतलूब है। यूं वो नफ्सियाती शराइत भी इस खुद पूरी होती रहेंगी जिनके बारे में राकमुल हरूफ ने सवाल किया था कि इसकी नवीयत क्या है। 2, कल कुल यम अलैशकला फरबाकुम अलम बामन होवा हदा सबील 17 बनी इसराइल 84। 3, जो एक इखलाकी तकाजा है कांट के नज़दीक ये इखलाकी तकाजा ही हयात बाद मौत की दलील है, इसके मुकाबले में दूसरा तकाजा है हिफ्ज़े ज़ात का। इंसान तबातन बका का आरज़ू मानता है, लेकिन खुद ही की हफाजत और परवरिश का मसला है क्योंकि सर तसर अखलाकी है और हकाम शरीयत ने कानून को भी इखलाक ही की शक्ल दी है, लिहाजा इस्लाम ने इन दोनों तकाजों को बड़ी खूबी से बाहम जमा कर दिया है। यौम-उद-दीन रोज़ो रोज़ सजा व जजा यौम-उद-दीन भी है और एक नए मुस्तकबिल की तमहीद भी। देखिए तश्कील जदीद खुतबा चहारम फरमाया मज़हब की तलीम भी यही है, हयात बाद मौत एक अमर यकीनी है। बाएँ हमा बकाए दुआम हमारा हक नहीं, ये अल्लाह ताला का फजल और इनाम है, हमें चाहिए अपने आप को इसके लिए तैयार करें। चार, इसलिए कि हई व कयूम सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। एक, जिंदगी इज अव्वल त आखिर इनाम है, हर हालत में इसके फजल की मुताज, ख्वा ये हयात अर्जी हो या आखिरी, इसका जौहर है। अमल और अमल तैयारी है किसी मकसद की, बकाए दुआ भी एक मकसद है और इस मकसद के लिए भी तैयारी शर्त है, वो अल्लाह ताला का इनाम है कि हम इसके मुस्तहक ठहरे। लेकिन फिर इस अमर का कि हम इसके मुस्तहक ठहरे, तकाजा है कि अपने आप को इसका सजावार साबित करें। अरशाद बारी ताला है, आ यस हबल इंसान ऐ या तरक सादी, सफ़ा नंबर 124। अल क़यामा था 36, गोया जिंदगी वो चीज़ नहीं कि ज़ाया हो जाए, इसकी एक तकदीर और मुस्तकबिल है, लिहाजा नफ्स इंसानी बावजूद मतनाहियत बका का आहिल देखिए गुलशन राज़े जदीद, बाबरश गुम शदन अंजामे मानीस्त, अगर ओ रात तो दर गिरी फना लीस्त। डॉक्टर जमीयत सिंह आ गए, हजरत अलामा का हाल पूछा, इनके कलब और जैतीन का मुआयना किया, दवा और गजा का जिक्र होता रहा। हजरत अलामा ने फरमाया, वैसे तो तबीयत अच्छी है, दवाएं वही हकीम साहब की हैं या फिर इनकी मुनासबत से कश्ची साहब के मरकबात हैं कि इस्तेमाल कर लेता हूँ, अलबत्त एक गलती हुई है, हकीम मोहम्मद अफजल ने एक कुश्ता तला तैयार किया है, मैंने इसकी एक ही खुराक खाई थी कि बेख्वाबी की शिकायत पैदा हो गई, भूख भी जाती रही है, मालूम नहीं क्यों। एक, जिंदगी इज अव्वल ता आखिर इनाम है, हर हालत में इसके फजल की मुताज, ख्वा ये हयात अर्जी हो या आखिरी, भी इसका जौहर है। अमल और अमल तैयारी किसी मकसद की, बकाए दुआम भी एक मकसद है और इस मकसद के लिए भी शर्त तैयारी शर्त है, वो अल्लाह ताला का इनाम है, हम इसके मुस्तहक ठहरे। लेकिन फिर इस अमर का कि हम इसके मुस्तहक ठहरे, तकाजा है कि हम अपने आप को इसका सजावार साबित करें। अरशाद बारी ताला है, ऐ हसबल इंसान ऐ या तर्क सदी, 57। अल क़यामत 36, गोया जिंदगी वो चीज़ नहीं कि ज़ाया जाए, इसकी एक तकदीर और मुस्तकबिल है, लिहाजा नफ्स इंसानी बावजूद मतनाहियत बका का आहिल देखिए गुलशन राज़े जदीद, बाबर बरहश गम शुदन अंजामे नीस्त, अगर और रा तो दर गिरी फना नीस्त। 2, वतन गुजरा वाला कश्ची साहब के हबाब में से थे, इनके साथ हजरत अलामा की खिदमत में अक्सर हो जाते, तिब से बड़ा शगफ था, वैसे महकमा डाक में मुलाजम थे। सफ़ा नंबर 125, डॉक्टर साहब ने कहा, कोई बात नहीं, मैं एक मिक्सचर तैयार तजवीज़ किए देता हूँ, 2-3 रोज़ इस्तेमाल कीजिएगा, फ़ायदा होगा, बेख्वाबी और ज़ोहफ़ इश्तहा की शिकायत भी जाती रहेगी। अली बख्श हर 10-15 मिनट के बाद कमरे से हो जाता या चंद मिनट रुक कर हजरत अलामा के शानों को दबाने लगता, अब के फिर चिलम बदल कर लाया तो डॉक्टर साहब ने इसे अपनी तजवीज़ करता दवा के मुतल्लिक ज़रूरी हदायत दी, नुस्खा लिखा और मेज़ पर रख दिया। मुल्की सियासत का जिक्र छिड़ गया, मुल्क की सियासी फजाकसी मकदर है। डॉक्टर साहब ने कहा, पंडित जी आपसे मिलने आए थे, मैंने सुना है देर तक बातें होती रहीं, गुफ्तगू का क्या रंग था। एक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अरशाद का बातें तो बहुत ही मगर बेनतीजा, मैं देखता हूँ तो पंडित जी परमात्मा गांधी का बड़ा असर है। फिर कदर तामल के बाद फरमाया, डॉक्टर साहब इस मुल्क का मसला कैसे हल होगा, इस मुल्क में धोती की बड़ी कदर है। डॉक्टर साहब मुस्कुरा दिए, चंद मिनट और बैठे और चले गए, वो समझ गए थे हजरत अलामा का इशारा किस तरफ है। 2, इस तरफ के एक आम आदमी महात्मा गांधी की मजहबियत और जहद और रियाजियत से मुतासर हो जाता है और समझते नहीं पाता कि इस मुल्क का सियासी मसला फिल हकीकत क्या है। मैंने अर्ज़ किया, रात कर्शी साहब से कुश्ता तला का जिक्र आया तो उन्होंने कहा कि खुराक में शायद कुछ ज्यादती हो गई थी, इसलिए गर्मी खुश्की बढ़ गई है, जैसा कि आम तौर पर बड़ी बुढ़िया कहा करती हैं। सफ़ा नंबर 126, फरमाया, मुमकिन है यही बात हो, मुझे इत्मीनान है, चाहे आगे अली बख्श ने प्याली बनाकर हजरत अलामा की खिदमत में पेश की तो उन्होंने चाय पीते हुए फरमाया, दुनिया के हर मजहब ने हयात बाद मौत की तारीफ की है, लेकिन अजीब बात है अहदनामा अतीक इस बाब में खामोश है, हजरत अलामा के सरशार से मुझे ऐसा गोना तजब हुआ, इसलिए आम तौर पर तो यही समझा जाता है कि तौहीद रिसालत और आखरत वो अकायद हैं जो इस्लाम और यहूदियत में मुश्तरक हैं। मैंने अर्ज किया, कुरान पाक में है यहूद कहते हैं इन्हीं आग नहीं छुएगी मगर चंद दिन, वो कहते हैं दारा आखरत सिर्फ हमारे लिए है। 3, लन तमसना नार अल अय्याम महदूदात, अल इमरान 24, अलजाद बाद दुरुस्त है लेकिन हयात बाद मौत का यह तसव्वुर खुदी के इस तसव्वुर से किस कदर मुख्तलिफ है जो इस्लाम ने पेश किया। इस तसव्वुर की रूह से तो इंसान तादम हशर कब्र में पड़ा रहेगा हत्ता कि क्यामत आए और फिर से जिंदगी नसीब हो। एक और जिसमें शऊर के तअत्तल की यह कैफियत होगी कि इंसान समझेगा मौत आई है इधर फिर जिंदगी मिल गई हालांकि बज़ुर्ख नाम है एक हालत से गुजर कर दूसरी हालत में कदम रखने का जिसमें शऊर मत्तल होता है ना जमाना बरक्स इसके मैं इस नफ्स से इंसानी जमा व मकान के नए नए मरातब से आशना होता है। बज़ुर्ख गोया तैयारी है दूसरी जिंदगी की। देखिए जवेद नामा हशर मिला शक कब्र व नफ सूर इश्क के शोर अंगेज खुद सुबह नशूर फरमाया मुतकलीन ने भी इसी तरह से यहूदी ही की पैरवी की है। मुस्तकलीन का ख्याल था कि इंसान मौत के साथ ही बरज़ख में चला जाता है और बरज़ख का जमाना मौत से सफा नंबर 127 लेकर रोजे हशर तक मुमतद। मुतकलीन की यह गलती थी कि उन्होंने जमाने की हकीकत पर गौर नहीं किया। मैं समझता हूँ कि मुतकलमीन के तर्ज फिक्र से एक तरह खुदी की नफी हो जाती है। दो जिसमें जमाना साकत रहता है लिहाजा इसका शौर भी। तीन देखिए तश्कील जदीद खुतबा सोम व चहारम। चार बसबब शऊर ज़ात और ज़माने की नफ़ी के फिर फरमाया साइयत ने अगरचा हयात बाद मौत पर जोर दिया है लेकिन इसकी बिना एक तारीखी वाक़े पर रखी। पाँच मसीह अकीदा है कि वाक़िया सलेब के तीसरे रोज शिक कबर हुआ और जनाब मसीह अलैहिस्सलाम बा जस्द अंसरा इस्लाम आसमान पर तशरीफ ले गए। दुनिया हसाइयत के पास हयात बाद मौत की इसके सिवा कोई दलील नहीं। मसीह अना जेल में भी ऐसा कोई इशारा नहीं जिससे समझा जाए कि हयात बाद मौत एक तबी अमल है यानी फलक अव्वल की तरह जदीद फलक जदीद का एक ऐसा अमल जैसा कि कुरान मजीद का इरशाद है। देखिए सूरह काफ आयात नंबर 4-5 हजरत अलामा कुछ थक से गए थे और अगरचा जी चाहता था कि फिर भी मैंने कोई सवाल नहीं किया वो चाय पी चुके तो फरमाया सर अकबर हैदरी मदारुल अलहाम दौलत आसफिया ने मुझे 1000 रुपये का चेक भेजा था मैंने इसे वापस कर दिया है। इस सिलसिले में कुछ अशार हो गए हैं नकल कर दो। अशार दर्ज ब्याज हो गया तो मुझे ये पूछने की ज़रूरत ना रही कि चेक क्यों वापस किया जा रहा है मगर फिर हजरत अलामा ने खुद ही फरमाया हैदरी साहब लिखते हैं ये रकम शाही तोशे खाने से जिसका इंतज़ाम मेरे ज़िम्मे है बतौर तवाज़िया भेजी जा रही है। सफ़ा नंबर 128 ये जिसका इंतज़ाम मेरे ज़िम्मे है कि अल्फाज नहायत तकलीफ़ दे हैं मैंने चेक वापस कर दिया है। एक ये अशार बाले जबरील में शाया हो चुके हैं बानवान सर अकबर हैदरी के नाम शायद यही नज़म थी जिसके पेश नज़र हजरत अलामा की वफात के थोड़े ही दिनों बाद शाद इकबाल ख़तो कताबत के नाम से एक मजमूआ मकतूबात शाया हुआ लेकिन इन ख़तों में तो कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे ये जाहिर हो कि हजरत अलामा महाराजा साहब से किसी अनायत के ख्वास्तगार थे। गोया हजरत अलामा को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पहुँची तो मेरे ज़ेर इंतज़ाम के अल्फाज यानी चेक किया था। बख्शिश और बख्शिश वो चीज़ है जिसे गैरत कबूल नहीं करती लिहाजा इनका अरशाद दो नंबर दो अंडर माई कंट्रोल गैरत फकर मगर कर ना सकी इसको कबूल जब कहा इसने ये है मेरी खुदाई की ज़कात। एक तरफ फकर है कि आँख को दुनिया को आँख उठाकर नहीं देखता दूसरी जान दुनिया के इस तलब में हर असूल और हर कानून बराए ताक रख दिया जाता है हत्ता कि इंसान एतकाद आ ना सही अमलन और शायद ना दस्ता कुफर तक का मर्तकब होने लगता है यूं अहले दुनिया की बातें चल निकली। तीन मौलाना रूम का इरशाद है अहले दुनिया का काफरान मतलब अंध हर दम अंदर जक जक अंधु बक अंध अहले दुनिया चह कहन वचा माहीन लगतना अल्लाह अलै अजमईन फरमाया कि मौजूदा मुलाजमत भी में अभी 1 साल बाकी है लेकिन की फिक्र में है कहते हैं तनख्वाह कम है गुजर नहीं होती इस पर अली बख्श ने जो पांव दाब रहा था। सफ़र नंबर 129 ये फिक्र चस्त किया कि नारकली में थानेदारी की जगह भी तो खाली है इसके लिए कोशिश करें हजरत अलामा को हंसी आ गई अरशाद हुआ भई आ गए हैं अंग्रेज़ी हुकूमत ने ये एक अजीब ताइफा मुलाजमत यूनान पैदा कर रखा है मैंने तो अर्ज़ किया था अल्लाह पर तवक्कल रखिए आपके पास माशाल्लाह बहुत कुछ है मुझे देखिए मेरे पास क्या है और क्या था। चार हजरत अलामा ने जॉब स्निफर के अल्फाज इस्तेमाल किए थे मुलाजमतों की बू सूंघने वाले फिर कहने लगे जैसे इन्हीं अपनी इब्तदाई ज़िंदगी और जमाना कल्ब इल्मी का जमाना याद आ गया। मैं एक ऐसे शहर में पैदा हुआ जो इस वक्त शहर भी नहीं था, छोटा सा कस्बा था जहाँ सिखों की हुकूमत खत्म हुए अभी 25 बरस ही गुजरे थे। मेरे दादा भी इनकी तरफदारी में अंग्रेजों से लड़े थे। मैंने अर्ज किया कहाँ, अर्शाद हुआ गुजरात में। फरमाया पंजाब में इन दिनों इल्म और हिकमत का खात्मा हो चुका था। मेरे वालिद को बड़ी ख्वाहिश थी कि मुझे तलीम दिलवाएं। उन्होंने अव्वल तो मुझे मोहल्ले की मस्जिद में बैठा दिया, फिर शाह साहब की खिदमत में भेज दिया। इस वक्त इसे मालूम था मैं एक दिन आधा से ज़्यादा तलीम हासिल करूँगा, दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में मेरा गुजर होगा, अलमन फजलन की सोबत में बैठने का मौका मिलेगा। इस वक्त तो ये भी मालूम नहीं था कि यूनिवर्सिटी क्या होती है, फैकल्टी किसे कहते हैं, ये लफ्ज़ सुनने में भी नहीं आए थे। 1848 में जब सिखों की ताकत हमेशा के लिए खात्मा हो गया। नंबर 2, जहां एक सूफी मंच बुजुर्ग आलम दीन और सालक व आरफ मौलाना गुलाम हुसैन अलैह रहमत अलैह दर्स देते थे। सफ़ा नंबर 130। 3, शम्सुल उलमा मौलाना मौलवी मीर हसन रहमतुल्लाह अलैह हजरत अलामा के उस्ताद मोहतरम फरमाया मेरी बातों को सुनकर कुछ खामोश से हो गए, ऐसे ही का मामला है। इनसे मुलाकात हुई तो क्या देखता हूं कि बेदर्दाना रुपया खर्च कर रहे हैं। मैंने टोका तो कहने लगे क्या परवाह है, की देर है, रुपया ही रुपया होगा। हसन इत्तफाक से यही हुआ कुछ, लेकिन मैंने अर्ज किया तो इनकी माली हालत सुधर नहीं सकी। फरमाया हाँ, मुझसे इसका जिक्र आया था, बाकी जो हालात है सबको मालूम है। इसके असना में शफी भी आ गए हजरत अलामा की बातें सुनने और उनके पांव दाबते रहे। अली बच खाना ले आया, हजरत अल्लामा ने खाना तनावल फरमाया और हुक्के के एक दो कश लेकर फरमाया वालद मोहतरम और शाह साहब एक दूसरे से मशवरा किए बगैर कोई काम नहीं करते थे। इस पर मुझे ख्याल आया क्यों ना हजरत अल्लामा से अपने वालद बुजुर्गवार और शाह साहब के तल्लुकात के बारे में सवाल करो, मगर फिर ये देख करके इस मौके पर यह सवाल करना मुनासिब होगा, खामोश हो गया। हजरत अल्लामा कह रहे थे एक रात मेरे वालद ने ख्वाब में देखा कि एक सफेद कबूतर बहुत ऊंचा उड़ रहा है और फिर उड़ते उड़ते दफ्तर इनकी झोली में आ गिरा। वो ख्वाब मेरी पैदाइश से कुछ दिन पहले का है, वो इसे इशारा गैबी समझे। इस इशारा गैबी के मतलब तो अब कुछ कहने की जरूरत नहीं। हम खामोशी मगर बड़ी दिलचस्पी से इनके अरशादात सुन रहे थे। हजरत अल्लामा ने बात ख़त्म की तो आराम से लेट गया ताकि थोड़ी देर सो ले। मैंने शफी से कहा घर हो आऊँ, वापसी में देर नहीं होगी। सुपहर हो रही थी, वापस आया तो हजरत अल्लामा हशाश बिशाश हुक्के के कश ले रहे थे। अली बख्श और शफी खिदमत के लिए हाजिर थे। मैं अपनी जगह पर बैठ गया, अली बख्श आया। सफ़ा नंबर 131। हजरत अल्लामा ने कोई तिब्बी मरकब इस्तेमाल किया, फिर शफी तो किसी काम से चले गए। मैं खामोश बैठा दिल ही दिल में अफसोस कर रहा था कि सियालकोट में जब मजबूरन रुकना पड़ा तो इस गुफ्तगू में शरीक ना हो सका जो हजरत अल्लामा ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से फरमाई थी। मैंने मुख्तलिफ बयानात सुने थे, मौका पाकर अर्ज किया पंडित जी से मुलाकात कैसी रही। फरमाया एक रोज़ डॉक्टर चक्रवर्ती आए थे, कहने लगे पंडित जी से जब कभी जिक्र आया उन्होंने आपसे बड़ी बड़ी हकीकत का इजहार किया, वो आज लाहौर आ रहे हैं, मेरा जी चाहता है कि उनकी आपसे मुलाकात हो जाए, आपको इतराज़ तो नहीं होगा। मैंने कहा इसमें इतराज़ की क्या बात है, आपको जब मौका मिले यहाँ ले आइए, लेकिन दो मसले हैं, एक हिंदुस्तान की आज़ादी, दूसरा आज़ादी की इस जद्दोजहद में मुसलमानों का हिस्सा। पंडित जी इन दोनों मसलों पर गौर करके आए। अरशाद व डॉक्टर साहब इस रोज़ शाम को फिर आए, कहने लगे पंडित जी को आज फुर्सत है, हम लोग 8 बजे हाजिर हो जाएंगे। मैंने कहा बस सरो चशम तशरीफ लाइए, कहने लगे आपको तकलीफ तो नहीं होगी, ये वक्त शायद आपके सोने का है। मैंने हंस कर कहा आज हम जरा देर से सो लेंगे, आप हजरात आए तो सही। चुनाचा 8 बजे के करीब पंडित जी तशरीफ लाए, डॉक्टर चक्रवर्ती इनके साथ थे, 2-1 खवातीन और मियाँ और बेगम इफ्तखारुद्दीन भी। देर तक गुफ्तगू रही, मैंने कहा कोई ख़ास बात तो नहीं हुई। फरमाया नहीं, बस यही सियासत हाजरा पर तबसरा होता रहा और वो भी सरसरी तौर पर, कोई ख़ास मसला जेर बहस नहीं था। अल्लाह ये कि रूस इंग्लिस्तान जर्मनी और इटली में सियासत का जो रंग है इसका जिक्र आया तो सवाल पैदा हुआ कि मगरब की हवस अस्तमार और जू अल अर्ज का नतीजा दुनिया के हक में क्या होगा, बिलखसूस एशिया के, आज़ादी या गुलामी और ज़्यादा गुलामी। सफ़ा नंबर 132। यूं बातों बातों में पंडित जी कहने लगे अगर मुसलमान बिला कैद शराइत कांग्रेस के साथ कांग्रेस का साथ दें तो क्या अच्छा हो, आज़ादी की मंजिल जल्द तय हो जाएगी और अंग्रेज़ भी देर तक हमारा रास्ता नहीं रोक सकेंगे। अर्शाद हुआ, इस पर मजबूरन मुझे पंडित जी से सवाल करना पड़ा कि अगर मुसलमान इनकी बात मान लें और बिला कैद शराइत कांग्रेस का साथ दें तो आज़ादी की मंजिल कैसे तय हो जाएगी, ये कैसे होगा कि अंग्रेज़ हमारा रास्ता ना रोक सकें। उन्होंने कहा कि यूं कि हम अपनी सरगर्मियां जारी रखें और हिंदू हों या मुसलमान बाहम शराइत तय करने का ख्याल छोड़ दें। मैंने कहा कैसी सरगर्मियाँ, कहने लगे यही कानून शिकनी और अदम अदाय मालिया की मुहिम। मैंने कहा इससे तो आज तक कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ, ना ये तहरीकें कामयाबी से जारी रह सकें। अंग्रेजी फौजें बदस्तूर हिंदुस्तान में पड़ी हैं, इनका अखराज कैसे अमल में आएगा, रहा इंतकाल अख्तियारात का अमल, सो ये इन तरीकों के बावजूद जारी है और जारी रहेगा, यूं आज़ादी की मंजिल कैसे तय होगी। इस पर पंडित जी कहने लगे इंतकाल अख्तियारात का अमल ही तो असल चीज़ है, हमारी तहरीकें जारी रहें तो ये अमल तेज तर हो जाएगा, हमने थोड़ी बहुत आज़ादी तो हासिल कर ली है, ये तहरीकें जारी रहीं तो अंदरूनी तौर पर और भी आज़ाद हो जाएंगे। एक जैसे 1922 में हुआ कि चोरी चोरा गुजरात देश में अदम अदाए मालिया की मुहिम ने फितना फसाद की शक्ल अख्तियार कर ली, लिहाजा बारूदबरी का फैसला के तारीख तुर्क मवालात बंद कर दी जाए, नंबर एक, और हिंदू अक्सरियत को बतरी अकलियतों बिलखसूस मुसलमानों पर तगल्लब और बरतरी हासिल रहेगी। सफ़ा नंबर 133, इनका क्या है, बरतानवी फौजें अगर हिंदुस्तान में पड़ी हैं तो पड़ी रहें, इसमें क्या हर्ज है, हम इनकी मौजूदगी बर्दाश्त करते रहेंगे ता आंका एक दिन आए इकबाल जब अंग्रेज़ खुद ही तंग आकर इस मुल्क से निकल जाएं। दो, जिसमें कांग्रेस को फायदा ही फायदा नजर आता था इसलिए बरतानवी फौजों की मौजूदगी में ना तो बाद अमनी का खतरा था ना खाना जंगी का, हुकूमत भी मजबूर होगी कि और नहीं तो महज अपने मफाद के पेशे नज़र फितना फसाद ना फैलने दे जो जाहिर अक्सरियत और अकलियत में अदम एतमाद की सूरत में ज़रूर फैलता, जैसा कि 1947 में हुआ। गोया सवाल आज़ादी का नहीं है, सवाल अंदरूनी आज़ादी का है, लेकिन इस अंदरूनी और बैरूनी आज़ादी के मसले से कतई नज़र, ये तो फरमाइए अंग्रेज़ इस मुल्क से क्यों तंग आने लगे, वो इस मुल्क से आप ही आप कैसे निकल जाएंगे, तेज तर कर दें, अंग्रेज़ खुद ही इस मुल्क से निकल जाएंगे, अंग्रेज़ गए तो हम एक दस्तूर साज असम्बली तलब करेंगे और ये दस्तूर साज असम्बली एक इश्तराकी आइन नाफज कर देगी। तीन, यानी इस वक्त जब हिंदू और अंग्रेज़ों में मुस्तकलन कोई समझौता हो जाएगा और कांग्रेस समझे कि मुल्क अंदरूनी और बैरूनी दोनों पहलुओं से महफूज है और इसके इकतदार को कोई ख़तरा नहीं। दो, ये इश्तराकी आइन का नफाज भी महज एक सियासी हिला था जैसा कि असूल आज़ादी पर साबित हो गया, पंडित जी 1962 तक बरसरे इकतदार रहे मगर सरमायादारी के खिलाफ एक कदम भी नहीं उठाया, फरमाया ये इस शख्स के ख्यालात हैं जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का नुमाइंदा है और जिसकी ज़ुबान से शुभ रोज़ शहनशीयत दुश्मनी का ऐलान होता रहता है। सफ़ा नंबर 134, इसके नज़दीक हिंदुस्तान की आज़ादी का मसला कैसा आसान था, कैसे कैसे मुसलमात हैं जिनका इस सिलसिले में मान लेना ज़रूरी है, ये मुसलमा के जापान हिंदुस्तान पर हमला नहीं करेगा, ये मुसलमा के अमरीका को हिंदुस्तान की ज़रूरत नहीं, अमेरिका हिंदुस्तान से दूर है बहुत दूर, ये मुसलमान के यूरोप की कोई कौम हिंदुस्तान का रुख नहीं करेगी, ये मुसलमान के जैसे जैसे अंदरूनी आज़ादी हासिल होती गई अंग्रेज़ हिंदुस्तान से तंग आ जाएंगे, ये मुसलमान के अंग्रेज़ हिंदुस्तान से निकल गए तो एक दस्तूर साज असम्बली तलब की जाएगी और ये असम्बली एक इश्तराकी आइन नाफज कर देगी, लेकिन कब ये ना पूछिए, बस इस तवक्को पर बैठे रहिए कि ये दिन आएगा और ज़रूर आएगा, अंग्रेज़ हिंदुस्तान से चले जाएंगे और ज़रूर चले जाएंगे, हिंदुस्तान में एक इश्तराकी हुकूमत कायम हो जाएगी, इसे कहते हैं करीबन नफ्स, इसे कहते हैं अंग्रेजी मुहावरे में जन्नतुल हम का, फरमाया पंडित जी की मंतक ही वही है जो गांधी जी की, दोनों की नज़र इंतकाल इख्तियारात पर है, दोनों के नज़दीक आज़ादी का मतलब अंदरूनी आज़ादी, दोनों का ख्याल है बरतानवी फौजें अगर हिंदुस्तान में पड़ी हैं तो पड़ी रहें, इससे मुल्क की आज़ादी में फ़र्क आता है ना इनकी शहनशाहियत दुश्मनी में, फरमाया दरअसल कांग्रेस और हुकूमत की सारी लड़ाई दो बलियों की लड़ाई है, कांग्रेस इससे एक बात समझाना चाहती है जिसे वो समझती तो है लेकिन मानती नहीं, मान सकती है और मानेगी मगर बदतदरीज, इसलिए कि हाकम आखिर हाकम है और महकूम महकूम, कांग्रेस चाहती है अंदरूनी तौर पर जमा में इकतदार इसके हाथ में दे दी जाए, रहें अंग्रेज़ी फौजें, सो अंग्रेज़ी फौजें अगर हिंदुस्तान में रह भी जाएँ तो क्या मज़ायका है, यूँ हिंदुस्तान की हिफाजत ही होती रहेगी, फरमाया सारा झगड़ा इसी सौदेबाजी का है मगर हैं दोनों बनिए सौदा हो तो कैसे। सफ़ा नंबर 135, ये दोनों चाहते हैं कि सौदा हो जाए मगर हर एक की कोशिश है कि हाथ ऊपर रहे, एक जैसा कि आलाबाद में हजरत अलामा इशारा कर चुके थे कि इंग्लिस्तान के पंडित और हिंदुस्तान के पंडित बाहम कुछ सोच रहे हैं। देखिए खुतबा सदारत दो, जैसा कि दूसरी जंग अजीम में साबित हो गया और जैसा कि भारतीय हुक्मरानों ने के नजदीक अब भी है। नंबर तीन, हजरत अलामा के अल्फाज थे, डैट वी आर स्मगली सिचुएटेड। फरमाया, मैंने तो पंडित जी से साफ कह दिया है मुझे आपके ख्याल से इतफाक नहीं। आप समझते हैं कि हिंदुस्तान को कोई खतरा नहीं, मैं समझता हूँ इसे खतरा ही खतरा है। आपके नजदीक हिंदुस्तान कुछ वाकया ही इस तरह से है कि हमारे लिए चैन ही चैन है, हम पर हमला नहीं होगा। मेरे नजदीक होगा और जरूर होगा, अंग्रेज हिंदुस्तान से नहीं जाएंगे, गए भी तो एक जबरदस्त जद्दोजहद के बाद। चार, जैसा कि 1942 में फिर वाकया हुआ, जापानी फौजें बर्मा से होकर असम में दाखिल हो गई और फिर अब तो ये भी साबित हो चुका है कि अमेरिका को हिंदुस्तान की जरूरत है। पांच, गो ये जद्दोजहद यूरोप में हुई, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को छोड़ा तो इन हालात के जेर असर जो दूसरी आलमगीर जंग के बाद बैन अल-अक़वामी दुनिया में रूनमा हुए और वो भी मजदूर हुकूमत के इक्तदार की बदौलत, वरना कदामत पसंद फरीक तो जब भी इस पर आमादा नहीं था। देखिए इस सिलसिला में मिस्टर चर्चिल की बरतानवी पार्लियामेंट में तकरीर, जिसमें 1947 की हौलनाक जानी और माली तबाही के बारे में इनकी पेशनगोई हरूफ बहरूफ साबित हुई। फरमाया, मैंने तो इनसे ये भी कह दिया था कि बिलफर्ज हम आपकी बात मान लेते हैं। सफा नंबर 136, हम समझते हैं आपके सब मुसलमान दुरुस्त हैं, लेकिन ये मुसलमान दुरुस्त हैं तो इनका और भी तकाजा है कि मुसलमानों के मुतालबात मान लिए जाएं और कांग्रेस इनसे मुफाहमत कर ले। हिंदुस्तान में कोई तहरीक कामयाबी से चल सकती है तो जब ही कि अकलीतों को अक्सरियत पर एतमाद हो और तस्फी हकूक का मसला तय हो जाए, लेकिन पंडित जी ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। एक, जिसे कांग्रेस ने बड़ी चलाकी से फिरकादारी का नाम दे रखा था ताकि दुनिया ये समझ ले कि मुसलमानों में कोई सियासी सूझबूझ है ना आज़ादी की तलब। मैंने कहा, तजब है पंडित जी आपसे मिलने आए, आपसे गुफ्तगू करें, सवाल आज़ादी का हो और वो आपकी बात का जवाब न दें। अरशाद हुआ, पंडित जी इस जाम में हैं कि हुकूमत और कांग्रेस में चूंकि आखिर आखिर कोई समझौता हो जाएगा, लिहाजा मुसलमानों को नज़रअंदाज किया जा सकता है। मैंने अर्ज किया, पंडित जी अगर ऐसा समझते हैं तो ये इनकी गलती है। बहरहाल इनका अंदाज बड़ा यास अंगेज है, इन्हें चाहिए था अपने मौकफ के हक में कुछ तो कहते। इनका ख्याल शायद यह है कि बहुत मुमकिन है बेअतनाई की इस रवज से रफ्ता रफ्ता मुसलमानों का जुदा गाना कौमी तशखस खत्म हो जाए। अरशाद हुआ, बात तो कुछ यही है, मैंने जब भी इन्हें समझाने की कोशिश की है, जब भी कहा, पंडित जी कोई भी नुक्ता नजर हो कांग्रेस या लीग का तकाजा सियासत बहाल यही है कि इस मुल्क के बशिंदों को बाहम इत्माद हो। उन्होंने हर बार गुफ्तगू का रुख बदला और सारा जोर इसी एक बात पर दिया कि मुफाहमत और मुसाहलत का ख्याल गलत है, हमें चाहिए बगैर ये सवाल उठाए मिलकर काम करें। अरशाद हुआ, मैंने तो पंडित जी से ये भी कह दिया था कि मुझे ना कांग्रेस से दुश्मनी है ना बिला वजह लीग से, मैं किसी फरीक की तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन सफा नंबर 137 इससे क्या किया जाए कि मुफाहमत और मुसाहलत के बगैर चारा नहीं, ये मुफाहमत व मुसाहलत होकर रहेगी, ये तकाजा है मुसलमानों की जुदागाना कौमियत का। अरशाद हुआ, मैंने तो ये भी कहा था कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ यूं ही नहीं कह रहा हूँ, मैं वही बात कहता हूँ जिसे हक समझता हूँ। सुनिए पंडित जी, मुसलमानों को अंग्रेजों से कोई इशक नहीं, वो इनसे इनके इक्तदार से कुछ ज्यादा ही नाला हैं और इसके वजूद शायद आप भी समझते हैं। रही शहनशियत दुश्मनी, सो अगर आप दिलों को टटोल सकते हैं तो टटोल लीजिए, शहनशियत दुश्मनी में भी मुसलमान हिंदुओं से कुछ आगे ही होंगे। एक, इसलिए पंडित जी ने तरीके आलम पर भी कदम उठाया है, इन्हें मालूम था कि आलम इस्लाम को जो भी नुकसान पहुंचा अंग्रेजों से पहुंचा, हिंदुस्तान में भी 1857 तक जो कुछ हुआ और मुसलमानों की सियासी अखलाकी और माशी एतबार से जिस तरह कुचलने की कोशिश की गई, पंडित नेहरू इससे बेखबर नहीं थे। दो, बसबाब हवाल आलम और बसबाब अपनी आफताद तबीयत के इस्लाम के जरिए असर मुसलमानों के नज़दीक आज़ादी का मतलब था बरतानवी इकतदार से आज़ादी, हिंदुस्तान ही की नहीं सारे एशिया और आलम इस्लाम का मुकम्मल इस्तखलास। अरशाद हुआ, लेकिन इसके बावजूद पंडित जी की यही कोशिश रही है कि असल मसले से गरेज करें। इस पर मैंने कहा, अच्छा पंडित जी एक लतीफ़ा सुनिए, पहली गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई और इसकी कार्रवाइयों की रुदाद अखबारों में आने लगी तो एक रोज़ कुछ मुसलमान मेरे पास आए और कहने लगे, हम आपसे एक बात समझना चाहते हैं। मैंने कहा, क्या? कहने लगे, ये दर्जा नौ आबादियात क्या चीज़ है? मैंने कहा, ये कानूनी इस्तलाह है जिसके समझने और समझाने में वक़्त लगेगा। कहने लगे, अच्छा सफा नंबर 138, इतना बता दीजिए कि दर्जा 9 अबादियात मिल गया तो क्या हम आज़ाद हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं। कहने लगे तो फिर इससे फायदा आप हमारे लीडरों को समझा दीजिए, बेकार जलसे ना करें, ये लोग ना खुद सोते हैं ना हमें सोने देते हैं। नंबर 3, 1930 में। 4, गो बावजूद कामर आज़ादी और शहनशाहियत दुश्मनी की रेट के कांग्रेस का ऐन मकसद यही था, हिंदू बरतानवी हुकूमत से सियासी और तजारती तलुकात कायम रहें और वो हिंदुस्तान की हिफाजत भी करती रहे, अलबत्त अंदरूनी तौर पर सारा इकतदार कांग्रेस के हाथ में आ जाए। चुनचा हिंदुओं की इस जहनीयत के पेश नज़र हजरत अल्लामा ने मीर रजी दानिश के शहर नमकशनास असीरा चो जफ्स रस्तंद ब नखल खाना सियाद आशिया बस्तंद की तजमीन करते हुए दर्जे नौ आबादियात के अनुमान से चंद अशार का एक कथा भी लिखा था। देखिए आखिर में जमीमा। नंबर 1, ये जलसे दर्जे नौ आबादियात की मुखालफत और मुखाफकत में रात के 1-1, 2-2 बजे तक कहम रहते। अरशाद भाई इस पर मियाँ इफ्तखारुद्दीन कहने लगे, बात है भी यही, जो हिंदू वो भी शहनशाहियत के ऐसे ही ख्वाहिशमंद हैं जैसे हिंदू, वो भी शहनशाहियत के ऐसे ही दुश्मन हैं जैसे कोई और। आप हक बात क्यों नहीं कह देते, मुसलमानों पर आप ही का असर है जनाब की कौन सुनता है। नंबर 2, मियाँ साहब मरहूम इस वक्त बड़े कट्टर कांग्रेसी थे, लिहाजा उन्होंने ये बात कही ताकि हजरत अल्लामा इस जलसे में आकर कोई ऐसा बयान दे दें जिससे लीग और कैद आजम के वकार को नुकसान पहुंचे। गो अभी कैद आजम के लिए कैद आजम का लकब तजवीज नहीं हुआ था। सफा नंबर 139, मैंने कहा मुझे ये कहने में क्या अजर है, लेकिन मुश्किल ये है कि जना तो हक बात सुन लेते हैं, नहीं सुनती तो कांग्रेस। क्या कांग्रेस फिर वाकई आज़ादी की ख्वाहां है इन्हीं मानों में जिनमें मुसलमान, क्या हिंदू सचमुच शहनशाहियत के दुश्मन हैं जैसे मुसलमान। नंबर 3, कि मुसलमान आज़ादी के तालब अस्तमार और शहनशाहियत के दुश्मन हैं। नंबर 4, वरना मुसलमानों से मुसाहलत क्या मुश्किल थी। फरमाया, मैंने कहा मियाँ साहब इस अमर से तो शायद आपको भी इनकार नहीं होगा कि मुसलमानों का इतिहाद ज़रूरी है, कोई भी जमात हो इसमें बहम इतिहाद होना चाहिए। क्या ये कोई बात दिल पसंद बात है कि मुसलमानों का तफरका व इंतशार कायम रहे, जब फिर जब इतिहाद एक अमर ज़रूरी है और जना की क़यादत से थोड़ा बहुत इतिहाद पैदा हो गया है तो इसे क्या इसलिए ख़त्म कर दिया जाए कि हिंदू नहीं चाहते मुसलमान बहसीयत एक कौम मुतहद हो जाए। माफ़ कीजिएगा, मैं इसके लिए तैयार नहीं, इस इतिहाद को कांग्रेस की रजा जोई या हिंदुओं की खुशनुदी पर कुर्बान नहीं किया जा सकता। फरमाया, मियाँ साहब ने बात आगे नहीं बढ़ाई, चंद मिनट और नशिस्त रही, फिर ये हजरात तशरीफ ले गए। शफी आ गए, शायद बच्चों की देखभाल कर रहे या किसी और काम में मसरूफ थे। अली बख्श चाय ले आया, दुआ का पूछा, हजरत अल्लामा कब से गुफ्तगू कर रहे थे अगरचा रुक रुक कर और बीच में सस्ता भी लेते। उन्होंने चाय पी तो अली बख्श हसबे ममूल शानने और पाँव दबाने लगा। इसी असना में रहमा भी आ गया, वो भी पैंती की तरफ हो बैठा। चौधरी साहब का इंतज़ार था, शफी कोई बात कह रहे थे और मैं सोच ये रहा था कि बज़ाहिर पंडित जी और हजरत अल्लामा की ये मुलाकात कैसी पुरतपाक रही, लेकिन हासिल कुछ भी ना हुआ। आला ये कि डॉक्टर चक्रवर्ती का ख्याल पूरा हो गया या ये कि पंडित जी की सियासत फहमी। सफ़ा नंबर 140, वुसत दिली और रवादारी के बारे में जो हुसन जन चला आ रहा था ख़त्म हो गया। 1, वैसे लाहौर में इस मुलाकात का खासा चर्चा था और ख्याल था कि बहुत मुमकिन है इससे कोई मुफीद मतलब नतीजा मरतब हो जाए, लेकिन जैसा कि बाद के वाकयात और बिलखसूस हसूल आज़ादी पर पंडित जी के इकतदार से साबित हो गया कि वो ज़ुबान से कुछ भी कहें कैसे भी सल्तनत दुश्मन इश्तराकियत पसंद इंसान दोस्त अवाम के बहीख्वाब वसीउल मशरब और बेतासब सियासतदान बनने की कोशिश करें, ये कहीं कि इनका नुक्ता नज़र में अल अक्वामी है, वो हर बात को अमली और वाकई नुक्ता नज़र से देखते हैं, बबाजतन बड़े कट्टर बड़े मुस्तबद और बड़े तंग नज़र ब्राह्मण थे, बकौल हजरत अल्लामा नगा दारद ब्राह्मण कार खुदरा नमी गोईद बख्स असरार खुदरा मेरा गोवीद के इस तस्बी बजगर बदोश खुद बुर्द जन्नार खुद रा अरमगाने हिजाज। शाम हो रही थी, मियाँ बशीर अहमद आ गए, हजरत अल्लामा का मजाज पूछा और बातचीत करने लगे। उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि आपने पंडित जी से फरमाया था कि पंडित जी बात असल में ये है कि आप तो मुहब्बे वतन हैं लेकिन जनाब कानूनदान या शायद ये कि जिना सियासतदान आम हुब्बे वतन, उन्होंने कहा ये बात वैसे तो ठीक मालूम नहीं होती लेकिन अंदेशा है लोगों में इसका चर्चा हुआ तो मुखालफीन इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। हमारी कोई सहाफत नहीं है, ना कोई मरकज इतला व नशरियात नशर व अशात, यूं लीग और जिना के खिलाफ गलत प्रोपोगंडा होगा। दो मदीर हमायों, हजरत अलामा ने फरमाया फर्ज कीजिए मेरे अल्फाज का वही मतलब है जो बकौल आप के लोगों ने समझा, इसमें क्या मजायका है, मैंने तो एक सीधी सादी बात कही थी।